वैधवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 2 ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मुनिय परमत्थ विथर मुनिवर वीरेहि सिद्ध विज्जेहि जासन्तु आभयवदी पश्यौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो वभावियो सन्नम् आवहैनाण सिद्धिं नाणफलं चाविनिर्वाणम् को सुवदेवयमिणमो दिक्कुत्तोपणमिवर्तीये गोच्छामि जहासुत्तम् चारित्रमोहसखवणविम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 16वीं पुस्तक में वही चारित्र मोक्ष अपना का 15वां अर्थाधिकार चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या है 13 पर आ गए। 13 अभी तक हमने जो पहले से लेकर शपक जीव की बातें देखी थी, पृष्टिकारक पृष्टिवेदक सूक्ष्म पृष्टिकारक सूक्ष्म पृष्टिवेदक आदि बातें, तो कहते इनके जो आधारभूत सूत्र है उसको अभी समझाएंगे। पहले उसका स्पष्टीकरण किया और बाद में सूत्रों की बात करें। अब सूत्रों में यही विषय फिर से चलेगा। यहाँ कहते इदानीम शेषाणम गाहाणम सुप्त फासो कायोगो। पहले 8 और 1-9 मूल गाथाएं बताई थी, अब शेष गाथाओं यहाँ बताएंगे शपक संबंधी। इस समय शेष गाथाओं का सूत्र रूप से स्पर्श करना चाहिए, श के ऊपर रफा देना। शंकाकार पूछते हैं सूत्र स्पर्श किसे कहते हैं, उसका स्पर्श करना चाहिए नहीं क्या करना चाहिए, उसका समाधान सूत्र का स्पर्श सूत्र स्पर्श है। पहले अर्थमुख से ने अर्थ रूप से इन्हें गाथाओं के अर्थ पहले बता चुके हैं। पहले अर्थमुख से विशेष रूप से व्याख्यात गाथा सूत्रों के इस समय उच्चारण पूर्वक गाथा सूत्र के प्रत्येक पद का परामर्श यानी स्पष्टीकरण करना सूत्र स्पर्श कहलाता है। पहले जिस अर्थ को जिस पूरे विषय को समझाया है उसको अभी गाथा के एक एक अवयव को लेकर उसका अर्थ क्या है उसको बताएं। इसे इस समय करना चाहिए, यह उक्त सूत्र का अर्थ है, अर्थ हुआ अर्थ है। यहाँ पर उक्त सूत्र में शेष पद के ग्रहण करने से पृष्ठियों के विषय में संबंध रखने वाली 11 मूल गाथाओं के मध्य स्थगित करने के अभिप्राय से जो 2 मूल गाथाएं स्थगित की गई थी उनको ग्रहण करना चाहिए। 11 मूल थी उसमें से 9 बताए थे और 2 स्थगित कर दी थी, क्योंकि पूर्वोक्त से अन्य शेष कहलाता है। पूर्वोक्त ने पहले जो बताया है उससे जो बाकी है उसको कहेंगे शेष, ऐसा नीति का वचन है। तथ ताव दशमी मूल गाहा, उनमें सर्वप्रथम यह 10वीं मूल गाथा है। उन 2 गाथाओं में सर्वप्रथम दसवीं मूल गाथा की समुत्कीर्तना करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब गाथा हम पढ़ेंगे। किट्टी कदम्बिकम् मे के बंद दिके वेद यदि अंसे शंका मे दिज के सुशंका मगो दी। मोहिनी कर्म के पृष्टि रूप से परिणमा देने पर किन किन कर्मों को कितने प्रमाण में बांधता है, किन किन कर्मों को कितने प्रमाण में वेदता है, और किन किन कर्मों का संक्रमण करता है, और किन किन कर्मों के विषय में असंक्रामक होता है, ये प्रश्नात्मक पूरे बताए हैं। अब इसके उत्तर में पूरा स्पष्टीकरण आता है। वैसे यहाँ प्रश्न चिन्ह होना चाहिए लास्ट में, गाथा रूप से इसलिए नहीं दिया। यह दसवीं मूल गाथा है जो अपने पूर्वार्ध द्वारा, पूर्वार्ध है ऊपर की लाइन, पहले हाफ फर्स्ट हाफ, पूर्वार्ध द्वारा प्रतिनियत स्थान में विद्यमान, यानी विशिष्ट विवक्षित स्थान में विद्यमान कृष्टि वेदक के, कृष्टि वेदक है तो उसका समय बताएंगे एग्जैक्टली कहां पर ही बात है, तो वहां पर स्थिति बंध और अनुराग बंध के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए हमने देखा अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्थिति बंध वगैरह होता था, तो उसको यहाँ समझना है। तो प्रतिनियत स्थान में विद्यमान कृष्टि वेदक के स्थिति बंध और अनुभाग बंध के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए तथा उसी के उस अवस्था में अनुभाग के उदय विशेष का अनुसंधान करने के लिए अवतरित हुई है। वहां पर किस रूप से वह बंध हो रहा है, किस रूप से उदय हो रहा है। पुनश्च पश्चिमार्ध द्वारा भी उस अवस्था में उसके प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों का संक्रम किस प्रकार का होता है, प्रवृत्त होता है। क्या कहते हैं, प्रकृति यानी प्रकृति संक्रम, स्थिति संक्रम, अनुभाग संक्रम और प्रदेश संक्रम किस प्रकार का होकर प्रवृत्त होता है, क्या विशेषता के बिना प्रवृत्त होता है या किसी प्रकार की विशेषता भी है, इस प्रकार इस अर्थ विशेष का प्रतिपादन करने के लिए अवतरित हुई है। यानी ये गाथा का क्या प्रश्न क्या है ये उन्होंने बता दिया। यथा अभी गाथा का एक एक अवयव लेके उसको समझाएंगे। किट्टी कदम्बी कम में पहले आकृष्टि स्वरूप ओ किट्टी आ क्यों कहा ओ कृष्टि स्वरूप मोहनीय कर्म के कुछ शेष छोड़े बिना पूरे के पूरे कृष्टि स्वरूप से परिणमित होने पर तदनंतर कृष्टियों के वेदक पने से प्रवृत्तमान यह क्षपक जीव ओ चाहिए ओ ओ चाहिए ना हाँ अच्छा हमने वो 14 पेज पर आगे का भी देख लो। चौदह नंबर ना परिणामी दे परिणामा परिणामी दे यानी प्राकृत में भी उन्होंने करेक्शन की है दसवें में परिणामी दे जहां एक परिणामी दे वो तो उन्होंने लिखा ही है नीचे और ये 27 में परिणमित होने पर परिणमा देने पर परिणमा देने पर यानी वो अकृष्टि चाहिए, आकृष्टि हुआ है ना ऊपर लिखे ना, पूर्वम अकृष्टि सर्वे, कि पहले अकृष्टि स्वरूप मोहिनी कर्म के कुछ शेष छोड़े बिना पूरे के पूरे कृष्टि स्वरूप से परिणमा देने पर तदनंतर कृष्टियों के वेदक पने से प्रवृत्तमान योग सपक जीव के बंधनी केव वेदेदियों से किन कर्मों के कितने प्रमाण वाली स्थितियों और अनुभागों को बांधता है और वेदता है, यह पृच्छा की गई है। यानी पहले उसने तो कृष्टि को परिणमा, इन्हें कृष्टि रूप से हो गया, यानी पहले कृष्टि कारक था फिर कृष्टि वेदक हो गया, उसके पहले समय की बात। इस प्रकार की पृच्छाओं का विशेष निर्णय आगे भाष्य गाथाओं के संबंध से बतलावेंगे तथा गाथा के उत्तरार्ध में के किन किन कर्मों के प्रकृति आदि के भेद से, या आगे की करेक्शन कहाँ है, परिणाम दे प्रेका हा? वो नीचे वाला, अच्छा वो चाहिए ही नहीं, यानी ऊपर परिणामी दे ही कर देना चाहिए, परिणामी दे नहीं परिणामी दे। अभी आगे पढ़ेंगे हम, 15 पेज पर आगे। साथ ही यानी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। साथ ही केसुआ किन कर्मों के कितने भाग का असंक्रामक होता है,
क्या
प्राप्त हुए, प्राप्त हुए कर्म प्रदेशों को, देख मैं पूरा पैराग्राफ फिर पढ़ती हूँ 31 नंबर का 14 में पेश से। किट्टी कदम कम में पहले अकृष्टि स्वरूप मोहिनी कर्म के कुछ शेष छोड़े बिना पूरे के पूरे कृष्टि स्वरूप से परिणमा देने पर तदनंतर कृष्टियों के वेदक पने से प्रवृत्तमान योग क्षपक जीव केव वेदेम से किन कर्मों के कितने प्रमाण वाली स्थितियों और अनुभागों को बांधता है और वेदता है, यह पृच्छा की गई है। इस प्रकार की पृच्छाओं का विशेष निर्णय आगे भाष्य गाथाओं के संबंध से बतलावेंगे तथा गाथा के उत्तरार्ध में के किन किन कर्मों के प्रकृति आदि भेद से वेद को प्राप्त हुए कर्म प्रदेशों को संक्रमाता है। साथ ही केसुआ किन कर्मों के कितने भाग का असंक्रामक होता है, असंक्रामक होती पूछा था ना, इस प्रकार यही इस मूल सूत्र गाथा का अर्थ के साथ संबंध है। यहाँ केवल केसुआ लिखा है, केसुआ अंशेषु संक्रामको वो नहीं लिया, यानी केसुआ से वो लास्ट तक सब केसुआ अंशेषु संक्रामको वो सब वहां ऊपर प्राकृत में लिखा था। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार यह मूल सूत्र गाथा का अर्थ के साथ संबंध है और यह मूल सूत्र गाथा में की गई पृच्छाओं का निर्देश अनुपूर्वी संक्रम आदि विशेष की अपेक्षा करता है, यानी किसमें किसमें संक्रमण करता है। वैसे तो संसार अवस्था में तो हम देखते कोई भी कषाय कहीं पर भी संक्रमित होता है, तो यहाँ विशिष्ट अनुपूर्वी संक्रमण है इसलिए प्रश्न पूछा है और इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे, यानी इस गाथा के भाष्य गाथा बताकर वहाँ उसका निर्णय करेंगे। इस प्रकार इस मूल गाथा के द्वारा पृच्छा मात्र से निर्दिष्ट किए गए अर्थ विशेषों की विभाषा करने पर उस विषय में ये पांच भाष्य गाथाएं हैं। इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। अभी जो दो गाथाएं बाकी है उसमें से पहली जो गाथा है मूल गाथा उसके पांच भाष्य गाथाएं। हाँ, अनुपूर्वी संक्रमण का अर्थ हमने देखा था कि जब अंतर करने के बाद वो सातकरण, अभी उसमें क्या होता है कि अनुपूर्वी संक्रमण एक विशिष्ट डायरेक्शन में ही संक्रमण होगा, ये क्रम से लाइन से होगा। नपुसक वेद श्रीवेद पुरुष वेद में ही संक्रमित हो गए, पुरुष वेद है क्रोध में ही संक्रमित होगा, क्रोध है वो मान में ही जाएगा, मान है वो माया में ही जाएगा, लोक का असंक्रामक होगा, इसको अनुपूर्वी। नहीं तो अन्य गुण स्थानों में कोई भी कषाय अन्य कषाय रूप परिणाम आता था, वैसा यहाँ नहीं होता। आगे कहते यदि से पंच भाष्य गाथा हो, इस मूल गाथा सूत्र की पांच भाष्य गाथाएं हैं, यह सूत्र सुगम है। तासिम समुक्कीर्तना, उनकी समुत्कीर्तना करते हैं, यह सूत्र सुगम है। यानी इन गाथाओं को क्रम से बताएंगे अभी। अब उन पांच भाष्य गाथाओं की यथाक्रम ही समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए वहाँ सर्वप्रथम प्रथम भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, ऐसा न्याय है। उद्देश्य ने हमारा जो प्रयोजन है उसके अनुसार यहाँ निर्देश ने कथन होता है। गाथा पढ़ेंगे हम। दस सुच वस संतो बंदिणीय माधुषे सगेयम से देशावरणीयाइं जेसिम ओवट्टणाथी। क्रोध संज्वलन की प्रथम कृष्टि के वेदक के अंतिम समय में, मोहनी कर्म के बिना शेष तीन कर्मों के अर्थात तीन घाती कर्मों की नियम से दस वर्ष के भीतर अर्थात अंतर्मूर्त कम दस वर्ष प्रमाण स्थिति का बंध करता है। ये हमने वहां करेक्शन किया था ना, याद है आपको। तथा इन कर्मों में जिनकी अपवर्तना संभव है उनका देशघाती रूप से बंद करता है, तथा जिन कर्मों की अपवर्तना संभव नहीं है उनका सर्वघाती रूप से बंद करता है। तीन घाती कर्मों में किसी का देशघाती रूप से बंद होता है और किसी का सर्वघाती रूप से, तो सर्वघाती रूप से किसका होता होगा? हाँ बोलो। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, जो सर्वघाती ही प्रकृतियां हैं वो तो सर्वघाती रूप से उनका बंध होगा। आगे पढ़ते हैं, अभी 16 पेज पर आ गए। यह प्रथम भाष्य गाथा है, इसके द्वारा प्रतिनियत स्थान में, प्रतिनियत ने विशिष्ट स्थान में, वो बताएंगे कौन से स्थान में कितना बंध है क्या है, विद्यमान यानी प्रतिनियत स्थान में विद्यमान कृष्टि वेदक शपक के तीन घाती कर्मों के स्थितिबंध और अनुभाग बंध के प्रमाण का निर्देश किया गया जानना चाहिए। अब इस भाष्य गाथा के प्रत्येक पद का अर्थ कहते हैं। यथा दशसुच वस्स संतो, जैसे हम अंतो मुहूर्त कहते हैं अंतर्मूर्त, यहाँ दस वर्ष के लिए अंतो शब्द लगाया, यानी अंतो दस वर्ष, यानी लेस देन दस वर्ष, अंतर्मूर्त कम कर दिया उसमें से। तो इस प्रकार कहने पर संज्वलन क्रोध की प्रथम पृष्टि का वेदक अंतिम समय में दस वर्षों के भीतर स्थिति को बांधता है। अर्थात अंतर्मूर्तकम दस वर्ष प्रमाण स्थिति को बांधता है। किस किन कौन से कर्मों को? तीन घाती कर्मों को। ये कौन कर रहा है बंद? उन्होंने बताया प्रथम कृष्टि का अंतिम समय वाला वेदक। यहाँ 10 वर्ष के भीतर 3 धातुकर्मों की बात है, मोहनी की नहीं। अर्थात अंतर्मूर्तकम 10 वर्ष प्रमाण स्थिति को बांधता है, उक्त कथन का तात्पर्य। 5वीं लाइन में आए हम लास्ट में, नियमादो निश्चय से ही शेष के अंश मोहनी कर्म को छोड़कर 3 घाती कर्मों की यानी 10 वर्षों के भीतर स्थिति को बांधता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये 3 घाती की बात कहां से निकाली, तो शेष कर्मों के यानी मोहनी को छोड़कर शेष की बात। मोहनी कर्म के भी स्थिति बंध के प्रमाण का निर्देश इसी वचन से सूचित किया जाना चाहिए। 3 घाती कर्मों के भी स्थिति बंध के प्रमाण का निर्देश इसी वचन से ही सूचित हो गया, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह भाषा भाष्य गाथा सूत्र देशामर्शक है। अब इस भाष्य गाथा के उत्तरार्ध का कथन करते हैं। यथा देशावरणीयायिन, अभी अनुवाद की बात चल रही है, बंद की देश घाती उनको ही बांधता है, जैसी मोवठना आती, ऐसा कहने पर घाती कर्मों में जिन कर्मों की अपवर्तना संभव है उन घाती कर्मों में देश घाती उनका ही बंधक होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु जिन घाती कर्मों की अपवर्तना का होना संभव नहीं है उन्हें सर्वघाती रूप से ही बांधता है, इस प्रकार यह अर्थ भी इसी भाष्य गाथा में ही गर्भित है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। अपवर्तना संज्ञा का पहले ही कथन कर आए हैं, अनुसमय अपवर्तन वगैरह देखा था ना, अनुभाव का घटना, अनंत गुणा अनंत गुणा, उसकी बात पहले बताई थी, इसलिए यहाँ उसका पुनः कथन नहीं किया जाता। अब इसी भाष्य गाथा सूत्र का स्पष्टीकरण करने के लिए इसको और स्पष्ट करेंगे, आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। एदिस से गाहाए विभाषा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। एदि ये गाहाए तिन्नम घातिकम्मानम तिलिबंधोच अनुभाग बंधोच नित्यिट्ठो, इस भाष्य गाथा द्वारा 3 घातिकर्मों के स्थितिबंध अनुभाग बंध का निर्देश किया गया है। मूल गाथा को ही और स्पष्ट बता रहे, जो हम पढ़ चुके हैं वही बात फिर दोबारा और विस्तार से बताएंगे। यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ही इस भाष्य गाथा में उन दोनों विषयों का निर्देश देखा जाता है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। कोहस परम किट्टी चरिम समय वेदगस्य तिन्नम घातिकम्मानम तिथिबंधो संखेज वस्य सहस्यहिं परिहाई दूण दसन्नम वंशाणमंतो जातो, क्रोध संज्वलन की प्रथम पृष्टि के अंतिम समयवर्ती वेदक के शेष 3 घाती कर्मों का स्थितिबंध संख्यात 1000 वर्षों से घटकर 10 वर्ष के भीतर हो जाता है। गाथा के पूर्वार्ध से संबंध रखने वाला यह विभाषा सूत्र भी सुगम है, इसलिए यहाँ इस संबंध में कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है। अथ अनुभाग बंधो तिन्नम घाती कम्माणम किम सौवघाधि देशघाधि, वे प्रश्न पूछ रहे। 3 घाती कर्मों का अनुभाग बंध क्या सर्वघाती होता है या देशघाती होता है, यह प्रश्न करना, प्रश्न चिन्ह। यह पृच्छा वाक्य सुगम, यानी प्रश्न का अर्थ तो ख्याल में आवे ऐसा सरल है। 3 घाती कर्मों के ही बारे में यह भी प्रश्न पूछा गया, तो उसके उत्तर में कहते, एदेसिम घाती कम्मानम जैसी मोवट्ठना थी तानी देश घाती नी बंध दी, जैसी मोवट्ठना न थी तानी सौव घाती नी बंध दी। इन घाती कर्मों में जिनकी अपवर्तना होती है उन्हें देशघाती रूप से बांधता है, तथा जिनकी अपवर्तना नहीं होती उन्हें सर्वघाती रूप से बांधता है। यह सूत्र सुगम है। उवट्टनासन्ना पूर्वं पुरुविदा सन्ना उन्न बराबर अपवर्तना संज्ञा का पहले कथन कर आए हैं। यह सूत्र भी गतार्थ है क्योंकि अपवर्तना संज्ञा का पहले ही अच्छी तरह विचार कर आए हैं, इसलिए अपवर्तना से रहित केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय सर्वघाती ही अनुभाग बंद होता है। तथा क्षोभशम शक्ति से संयुक्त शेष अपवर्तना प्रकृतियों का, यानी जिनमें क्षोभशम शक्ति हो सकती है, देखो ये क्षोभशम नाम का जो कोई प्रोसेस है वो किसमें हो सकता है, देशघाती में ही हो सकता है, सर्वघाती में नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक है उसी में बताएगी ना कि सर्वघाती का उदय नहीं हो रहा है, वो पड़े है भविष्य में, देशघाती का उदय हो रहा है। तो क्षोभशम शक्ति से संयुक्त शेष अपवर्तना प्रकृतियों का देशघाती ही अनुभाग इस स्थान में प्रवृत्त होता है, क्योंकि देशघाती करण से लेकर इस स्थान में उन प्रकृतियों का अन्य प्रकार संभव नहीं है। ये देशघातीकरण कहाँ हुआ था जेपी साहब? अंतरकरण के पश्चात। जिन कर्मों के देशघाती स्पर्धक होते हैं उन कर्मों की अपवर्तना संज्ञा है, ये बता दिया। अपवर्तना वाले कर्म कौन से समझना? तो जो देशघाती प्रकृतियां हैं वे, क्योंकि उनमें ही देशघाती स्पर्धक होते हैं। सर्वघाती प्रकृतियों में मात्र सर्वघाती ही होते हैं और देश में दोनों ही होते थे, परंतु यहाँ तो देशघाती करण भी हुआ था तो उनमें देशघाती स्पर्धक। इस प्रकार उक्त भाषा गाथा के उत्तरार्ध से संबंध रखने वाले इस विभाषा ग्रंथ का यह समुच्चय रूप अर्थ है। इस प्रकार इतने विभाषा ग्रंथ के द्वारा प्रथम भाष्य गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त करके अब दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। उन्होंने इतनी बात बताई है कि स्थिति कितनी बनती है तीन गाती कर्मों की, तो 10 वर्ष के बीच अंतर्मुर्त कम, और उनका अनुभाग कैसा बनता है देशघाती रूप से, किन में जिनमें जिनकी अपवर्तना होती है उनमें, यानी केवल ज्ञान और दर्शनार्थ में नहीं बनता, उसमें तो सर्वघाती ही बंधेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एतो विद्याए भाषगाहाय समुत्कीर्तना, यह दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना है। पहले मूल गाथा पर अभी, यानी पहले नहीं वो 10 नंबर के, अभी उसमें 2 नंबर की भाष्य गाथा होगी। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब गाथा पढ़ेंगे। चरिमो बादर रागो नामा बोधानि वेदनीयं च वससंतो बंददि दिवससंतो यजं सेसं। उसका अर्थ देखते नहीं। नौवे गुणस्थान में चरिमो बादर रागो, बादर राग कहो बादर सांप्राय कहो, तो उसका अर्थ होता है नौवे गुणस्थान, जिसको अनिवृत्ति बादर सांप्राय भी कहते हैं। तो नौवे गुणस्थान में अंतिम समयवर्ती बादर सांप्रायिक शपक नाम कर्म गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म को एक वर्ष के अंतर्गत बांधता है, यानी वर्ष से भी कम बांधता है, और जो शेष तीन घातिया कर्म ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म है उनको एक दिवस के अंतर्गत बांधता है। वो पहले संग्रह कृष्टि का अंतिम समय लिया था, वहां तीन घाती का 10 वर्ष था, अब एक वर्ष में कम हुआ, और नाम गोत्र और वेदनी का एक वर्ष। आगे यह दूसरी भाष्य गाथा अनिवृत्तिकरण क्षपक के अंतिम समय में मोहनी कर्म को छोड़कर शेष सभी कर्मों के स्थितिबंध के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए अवतरित हुई है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ही इस भाष्य गाथा में उस प्रकार के अर्थ का निर्देश देखा जाता है। किंतु इस गाथा सूत्र के अवयवों की अर्थ प्रवृत्तना सुगम है। अब इसी गाथा सूत्र को स्पष्ट करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को कहते हैं विहासा। अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। के नीचे क्या हुआ, कुछ प्रिंट आया है। तम जहां वह जैसे, तम नहीं लिखा है, जहां लिखा है वह जैसे। यह सूत्र भी सुगम है। अब सूत्र बता रहे हैं। चरिम समय बादर सांप्रायस नामागोध वेदनीयानम तिरिबंधो वत्सम देशुनम तिन्नम घाति कम्माणम मुहूर्त बुधत्तो तिरिबंधो। अंतिम समयवर्ती बादर सांप्रायिक शपक के नाम कर्म गोत्र कर्म और वेदनी कर्म का स्थितिबंध एक वर्ष से कुछ कम होता है तथा तीन घाती कर्म ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म का स्थितिबंध मुहूर्त पृथक प्रमाण होता है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। इतनी विशेषता है कि मोहिनी कर्म का अंतिम स्थितिबंध अंतर मुहूर्त प्रमाण सुप्रसिद्ध है। क्योंकि जो सूत्र है प्रत्येक कर्म का जघन्य स्थितिबंध कितना कितना है, तो मोहिनी का कितना है, एक अंतर्मुहूर्त, इसलिए वो कहते सुप्रसिद्ध है। इसलिए इसका कथन इस भाष्य गाथा में नहीं किया है। इस प्रकार इस दूसरी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यानी यहाँ तीन घाती कर्मों का कितना है, स्थिति बंध अनुभाग बंध कैसा है, उसकी बात है। प्रथम समयवर्ती क्रोध वेदक का अंतिम समय भी लिया और अनिवृत्तिकरण का भी अंतिम समय, दो जगह उसकी बात देखी। एतो तदियाय भाषगाहाय समुत्कीर्तना। अब इससे आगे तीसरी भाषगाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। यह ना संख्या नहीं लिखी, 157 है ना, पहले 156 हो गई। वहाँ 156 और 209 था पंचम, यहाँ 157 और 210 होना चाहिए। भाषा गाथाओं के मिलाए हुए, देखो गाथा पढ़ेंगे। चरिमो यसुमरागो नामागोदानि वेदनीयं च दिवसः संतो बन्धति भिन्नमुहूर्तं तुजं शेषम्। अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक जी ये भी अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय वाला लिया। नाम कर्म गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म को एक दिवस के भीतर बांधता है तथा शेष जो तीन घाती कर्म ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म है उन्हें भिन्न मुहूर्त प्रमाण बांधता है। भिन्न मुहूर्त वो अंतर्मुहूर्त ही है। हाँ इसे हमने पढ़ा था, यहाँ कोई अलग अर्थ होगा तो देखेंगे। भिन्न मूर्त को हमने ऐसा देखा था, सबसे बड़ा अंतर्मूर्त जो है मूर्त में एक समय कम वाला, यहाँ कुछ विशेष लिखा होगा तो देखेंगे। यह तीसरी भाष्य गाथा, हमें तो मालूम है ना उनका जघन्य स्थिति बंध कितना होता है, नाम कर्म का और गोत्र कर्म कितना होता है, हाँ आठ मूर्त और वेदनी वाला बारह, उसको एक दिवस के भीतर कहा, यहाँ पर एक दिवस के भीतर कहा ना, यहाँ तक ही उनका बंध है ना, स्थिति का बंध यहाँ तक ही है, आगे आगे वेदनी का बंध है केवल, ये दसवें के अंत की बात चल रही थी, अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय की बात चल रही है। यह तीसरी भाष्य गाथा अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के छह कर्मों के स्थितिबंध का प्रमाण इतना होता है, इस बात का कथन करने के लिए अवतरित हुए। ये छह कर्मों में कौन से दो छोड़े नितिन भाई?
मोहनी और आग।
हाँ बहुत अच्छा, मोहनी क्यों नहीं बन रही है? कहाँ पर? अभी दसवें में आए, वो बंधन नहीं है यहाँ पर उसका, ये अंतर्मूर्त बताया था, वो नौवे के अंत में बताया था, अब यहाँ हम दसवें के अंत में आ गए। तो छह कर्मों के स्थितिबंध का प्रमाण इतना होता है, इस बात का कथन करने के लिए अवतरित हुई है। यथा चरिमो या सूम रागो अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक जीव नामा गोदानी वेदनीयम च, नाम गोत्र और वेदनीय इन तीन अघाती कर्मों को दिवस संतो बंधदी संख्यात मूर्त प्रमाण बांधता है। उसका उन्होंने क्या बताया, संख्यात मूर्त, तो हमें मालूम है एक के वो आठ मूर्त है, एक के बारह मूर्त है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आगे बता रहे, क्योंकि नाम कर्म और गोत्र कर्म का आठ मूर्त प्रमाण स्थिति बंध देखा जाता है, ये जघन्य में जघन्य स्थिति बंध है, इससे आगे उसका बंध रुक जाएगा, केवल वेदनीय का रह जाएगा बारहवें में। हाँ वो तो स्थिति बंध है ही नहीं, बंध मात्र मोहनी वेदनीय का है, उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ेगा, उसी समय निकल जाएगा। तथा वेदनीय कर्म का बारह मूर्त प्रमाण स्थिति बंध देखा जाता है, भिन्न मूर्तम जम शेषम, इस भाष्य गाथा सूत्र के अंतिम चरण से पहले कहे गए तीन अघाती कर्मों से शेष रहे जो तीन घाती कर्म, उनका अंतर्मूर्त प्रमाण सिद्धिबंध, भिन्न मूर्त के लिए केवल अंतर्मूर्त कह दिया, सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के अंतिम समय में होता है, इस प्रकार इस अर्थ विशेष का ज्ञान करा गया है। अब गाथा सूत्र के इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का विभाषा ग्रंथ आया, यहाँ तो गाथा और उसका डायरेक्ट अर्थ बताया, अब उसकी विभाषा करेंगे। विभाषा, अब इस भाष्य गाथा सूत्र की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है, कहते चरिम समय सुम सांप्रायस नामा गोदानम तिदिबंधो अठ मूत्ता, अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के नाम कर्म और गोत्र कर्म का स्थितिबंध आठ मुहूर्त प्रमाण होता है। वेदनीय ठिदिबंधो बारह समूहता तिन्नम घातिकम्मानम ठिदिबंधो अंतो मुहूर्तो, ओके ऊपर बिंदी करना, अंतो मुहूर्तो, यानी नाम गोत्र का आठ मुहूर्त, वेदनीय का बारह मुहूर्त और तीन घाती का अंतर्मुहूर्त, नीचे लिखा है। वेदनीय कर्म का स्थितिबंध बारह मूर्त प्रमाण होता है तथा तीन घाती कर्मों का स्थितिबंध अंतर मूर्त प्रमाण होता है। ये तीनों सूत्र सुगम है, इस प्रकार इन तीन भाषा गाथाओं द्वारा के बंधदी इस मूल सूत्र गाथा संबंधी अवयव का मूल सूत्र गाथा संबंधी अवयव का अर्थ कहा। अब केव वेदेदियम से, इस प्रकार इस मूल गाथा सूत्र संबंधी अवयव का आश्रय करके कृष्टि वेदक के रात्रि कर्मों के अनुभाग के उदय विशेष का अनुसंधान करने के लिए चौथी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी यहाँ अनुभाग के उदय में क्या विशेषता होती है उसकी बात यहाँ बताएंगे। एक तो चौथी भाष्य गाहाय समुत्कीर्तना, इससे आगे चौथे भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ गाथा पढ़ेंगे 158 और यहाँ 211। अधमदि सुध आवरणे च अंतराये च देशमावरणम् लद्दीय वेदयदये सौवावरणम् अलदीय। जो लब्धि संज्ञा वाले यानी क्षोभम संज्ञक मति ज्ञानावरण चित्त ज्ञानावरण और पांच अंतराय कर्म है। लब्धि संज्ञा वाले ने क्या जिनमें क्षोभम होता है ऐसे जो है तथा भाष्य गाथा सूत्र में आए हुए च पद से गृहित अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण चक्षु दर्शनावरण और चक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण कर्म है उन सब का देशावरण रूप से वेदन करता है। तथा अलब्धि संज्ञा वाले जिन कर्मों का क्षोभम नहीं हुआ है उन कर्मों का सर्वघाती रूप से वेदन करता है। परंतु अवधि ज्ञानावरण दर्शनावरण का नहीं था ना।
बारह
को में लिख लिया उन्होंने।
मेरा क्वेश्चन क्या है आप हम लोग को तो भी याद विद्या दृष्टि को भी देशावरण रूप से उनका सर्व
किसका
ये सभी
उदय न
हाँ
है ना। अब यहाँ तो और भी ज्यादा है परंतु जो सर्वघाती वाले उसका तो नहीं होगा ये बात बता रहे। यहाँ और भी ज्यादा देशघात यानी इसमें सर्वघाती भी स्पर्धक थे कि नहीं सर।
वो तो बंद की अपेक्षा
बंद की भी और सत्ता में भी करेंगी ना। उदय में तो देशघाती तो पहले से ही है इनका कहना है पहले भी देशघाती रूप से उदय था परंतु मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान उसमें तो नहीं लगा सकते ना उसमें तो सर्व अवधि ज्ञान होगा ही ऐसा नहीं होगा
नहीं
होता है
ऐसे समझना चाहिए
जिनके होते हैं उनके बात
नहीं। यहाँ तो देशावरण रूप से उनका अवधि बताया
है यहाँ और ज्यादा उसका अनुभव घटता है इसकी बात करना है। नहीं नहीं कथा इसका तो वेदन तो वैसा ही चलेगा क्योंकि यहाँ कैसा क्या चल रहा है तो यहाँ बताए पहले भले करते हो उसका निषेध कहाँ है पहले नहीं तारा करने लगा ऐसा तो नहीं कहा यहाँ क्या हो रहा है बस
यहाँ
भी चल रहा
है
अभी देशावरण रूप से उसका चल रहा है यहाँ पर क्योंकि वो जो चल रहा है क्या क्या है हरेक के कर्मों के बारे में पूछ रहे हैं उसकी बात है। इन्हें लब्धि संज्ञा ये तो हमने देखा ना अब उसका ही नीचे भाष्य कर रहे यह चौथी भाष्य गाथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन तीन मूल प्रकृतियों की क्षोभम शक्ति से युक्त जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनके अनुभाग का उदय इस कृष्टि वेदक शपक के देशघाती रूप होकर प्रवृत्त होता है या सर्वघाती रूप होकर प्रवृत्त होता है, इस प्रकार इस अर्थ विशेष का प्रतिपादन करने के लिए अवतीर्ण हुई है। शंका, संक्रामण प्रस्थापक के दूसरी भाष्य गाथा के संबंध से। संक्रमण प्रस्थापक शब्द पहले आया था, याद है उसका अर्थ क्या होता है? शपक, शपक के लिए बात है, परंतु वो भी आठ कषाम की या वो सोलह प्रकृतियों के वहां से नहीं लिया। अंतर करने के बाद उसको खास संक्रामक प्रस्थापक कहते हैं, वहां से उसको ये टर्मिनोलॉजी आ गई। तो संक्रामण प्रस्थापक के दूसरी भाष्य गाथा के संबंध से पहले ही इस प्रकार के अर्थ विशेष की विस्तार के साथ विभाषा कर आए हैं, इसलिए इस समय इसको पुनः किस लिए आरंभ किया जाता है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्टि वेदक के संबंधवश विशेष रूप से फिर भी उसके प्ररूपण करने में कोई दोष नहीं पाया जाता। आप जैसा प्रश्न है ना, आप तो पूर्व संसार अवस्था की बात की, शंकाकार ने तो बताया, अभी अभी बताया था, तो ये फिर दोबारा क्यों बता रहे? तो कहते ये यहाँ जो कृष्टि वेदक का विषय चल रहा है उस संबंध से उसको फिर दोबारा बताने में कोई दोष नहीं है। अब इस चौथी भाष्य गाथा के अवयवों के किंचित अर्थ की प्ररूपणा करेंगे। यथा इस भाष्य गाथा सूत्र में अध यह निपात पाद पूर्ण अर्थ में जानना चाहिए। ऊपर लिखा ना, ये गाथा देख लो, अध मधिसुद आवरण, ये अध शब्द का कोई बात न, कोई अर्थ नहीं है यहाँ। तो वो तो पूरा जो कितने इतने अक्षरों का एक चरण होता है उसको पूरा करने के लिए वहां डाला गया, जैसे हिंदी में भी पुनी फुनी ऐसा डालते हैं ना, बहुत बार आता है वो प्राकृत, ये गुंडारी भाषा में फुनी फुनी शब्द डालते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। पाद पूरण, पाद यानी शब्दों को पूरा करने के लिए, उतने वहां शब्द होने चाहिए गाथा में, उतने अक्षर होने चाहिए, उसके लिए डाला।
एक चीज बोला है, ये
वही तो कथा अंतर के बाद, मैंने वही बात बताई। तो यह निपात पाद पूर्ण, निपात यानी ये जो शब्द डाला गया है वो पाद पूर्ण अर्थ में जानना चाहिए या अनुपशमीकरण के अर्थ में जानना चाहिए। अनुपशमीकरण, सुदमदि आवरणे च ऐसा कहने पर श्रुत ज्ञानावरणी और मति ज्ञानावरणी के अनुभाग को यह क्षपक वेदन करता हुआ देशावरण रूप से ही वेदन करता है, अर्थात इन कर्मों का देशघाती स्वरूप अनुभाग का वेदन करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस भाष्य गाथा सूत्र में आए हुए श शब्द के निर्देश से अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण कर्मों का तथा चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण कर्मों का ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इन कर्मों का भी क्षोभम लब्धि के संभव होने से देशघाती अनुभाग के उदय के संभव होने के प्रति विशेषता का अभाव है। ये पंचलब्धि वाली क्षोभम लब्धि नहीं समझना, जिनमें जिनमें क्षोभम होता है उसको ये लब्धि रूप से शब्द डाला गया है। केवल इन्हीं कर्मों के अनुभाग को यह क्षपक देशघाती स्वरूप से वेदन नहीं करता, किंतु अंतराय च अंतराय कर्म की पांचों प्रकृतियों का भी देशावरण स्वरूप अनुभाग को यह क्षपक वेदन करता है, क्योंकि उनके उक्त कर्मों के क्षोभम लब्धि कर्मांश रूप होने के प्रति विशेषता का अभाव है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आपका यही प्रश्न था ना, पहले अनादि से तो क्षोभम रूप से अनुभव कर रहा था, तो अभी भी कर रहा है, अभी मिटा नहीं है, इतना तो ले लो। अभी भी उदय वैसा चल रहा है, अभी उदय का अभाव तो नहीं, उनका तो उदय चल रहा है। इस प्रकार इन कर्मों के अनुभाग का उदय देशघातीपने को कैसे प्राप्त हो गया, ऐसी आशंका होने पर उक्त भाषा गाथा सूत्र में यह वचन कहा है, लब्धीय यतः इन कर्मों की क्षोभम लब्धि यहाँ पर संभव है। ये आपको उसका कारण बताया, इसलिए इन कर्मों के देशघाती स्वरूप अनुभाग को यह जीव वेदता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इस कथन द्वारा
इस पॉइंट में मेरे को मतलब इसी पेज पर अनुक्षरणकरण का मतलब समझ नहीं आया, ऊपर जो दूसरी लाइन थी अनुक्षरणकरण पाद पुराण के बाद में दूसरी लाइन
अध्यय यानी पाद पाद पुराण के अर्थ में जानना चाहिए
या अनुक्षरणकरण
अनुक्षरणकरण के अर्थ में जानना चाहिए, यानी क्षोभम के अर्थ में जानना चाहिए, ऐसा हो सकता है। उपशम का अर्थ हमने ऐसा देखा ना, उदय में नहीं आना, यहाँ तो देशघाती रूप से उदय में आने की बात चल रही है। अब हम नीचे 57। इस प्रकार इस कथन द्वारा इन कर्मों के अनुभाग के उदय के देशघातीपने के संभव होने का कथन करके अब उन कर्मों के एकांत के निश्चय के निराकरण द्वारा इन उक्त समस्त कर्मों के अनुभाग का उदय सर्वघाती स्वरूप भी संभव है, इस बात का प्रतिपादन करते हुए उक्त भाष्य गाथा का यह वचन कहा है, सवावरणम अलधीय इन कर्मों के अनुभाग के उदय की केवल देशघाती स्वरूप ही वेदन नहीं करता, उदय को केवल देशघाती स्वरूप ही वेदन नहीं करता किंतु सवावरणम च इन कर्मों को सर्वघाती स्वरूप भी वेदन करता है, जो सर्वावरणी है उनको सर्वघाती रूप से वेदन करता है। शंका, इसका कारण क्या है, उसका समाधान, क्योंकि अलब्धीय ये कर्म क्षोषम लब्धि से रहित है। अलब्धि का अर्थ है यतः इन कर्मों का क्षोभम विशेष किन्हीं जीवों में नहीं पाया जाता, यानी इनका क्षोभम होता ही नहीं, जैसे केवल ज्ञानावरणी केवल दर्शन और भी कोई है, और भी कोई कर्म है यहाँ पर सर्वावरण वाले जिसका क्षोभम नहीं होता, कोई नहीं निद्रा निद्रा प्रज्वला का उदय है 12 तक, सर्वावरण कह दिया उन्होंने, क्योंकि मुख्य रूप से है ना, निद्रा का भी कभी क्षोभम नहीं होता है, वो तो या तो उदय होगा या नहीं होगा, आइदर उदय होगा या नहीं होगा। देखो अलब्धि का अर्थ है यथा इन कर्मों का क्षोभम विशेष किन्हीं जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए किन्हीं जीवों में इन कर्मों के अनुभाग का उदय सर्वघाती स्वरूप भी विरोध को प्राप्त नहीं होता।
मेरा मतलब मैं सोच रहा था मुझे किसी का अवधि ज्ञान नहीं है,
अभी ये प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है अवधि ज्ञानावरण मनपरे ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण के अनुभाग का उदय किन्हीं जीवों में देशघाती स्वरूप होकर प्रवृत्त होवे तथा अन्य जीवों में उक्त तीन कर्मों का उदय सर्वघाती स्वरूप होकर प्रवृत्त होवे, क्योंकि सब जीवों में इन तीन प्रकृतियों की क्षोभम लब्धि होने का नियम नहीं पाया जाता, किंतु मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के देशघाती और सर्वघाती स्वरूप अनुभाग का उदय भजनीय रूप से इस क्षपक के प्रवृत्त होता है, यह बात घटित नहीं होती, क्योंकि उन प्रकृतियों के क्षोभम लब्धि के सब जीवों में अवश्य होने का नियम देखा जाता है, यानी ऐसा तो नहीं कह सकते कि शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती का भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कह सकते। और इनका देशघाती ही होता है ऐसा भी नहीं कह सकते। प्रश्न तो यही है, किसी के सर्वघाती का भी हो सकता है, उसका परिहार करें। समाधान, अब यहाँ पर इसका परिहार करते हैं। यह बात सच है, इन कर्मों की क्षोभम लब्धि सामान्य, क्षोभम लब्धि सामान्य सब जीवों में नियम से संभव है, किंतु क्षोभम विशेष का आश्रय करके। एक तो क्षोभम सामान्य लिया और एक क्षोभम विशेष कह रहे हैं। क्षोभम विशेष का आश्रय करके प्रकृत अर्थ का समर्थन इस प्रकार जानना चाहिए। यथा सर्वप्रथम मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण की अपेक्षा कथन करते हैं। इन दोनों प्रकृतियों की असंख्यात लोक प्रमाण उत्तरोत्तर प्रकृतियां हैं। क्योंकि पर्याय श्रुत ज्ञान से लेकर सबसे उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान तक समवस्थित ज्ञान के भेदों में प्रतिबद्ध असंख्यात लोक प्रमाण आवरण के भेद उपलब्ध हैं। यहाँ पर मति ज्ञान के इतने आवरण के भेद सूत्र में नहीं कहे गए हैं, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान के भेद से भेद को प्राप्त हुए मति ज्ञान के भी उतने आवरण के भेदों के संभव होने में विरोध का अभाव है। यानी मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होते हैं तो जितने श्रुत ज्ञान के भेद बताए हैं उतने ही मति ज्ञान के भी घटित हो जाते हैं। और ऐसा होने पर उस विषय में जो सबसे उत्कृष्ट क्षोभम से परिणत 14 पूर्वधर तथा जो सबसे उत्कृष्ट कोष्ठ बुद्धि आदि मति ज्ञान विशेष से संपन्न ऐसा जो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ जीव है उसके इन दोनों प्रकृतियों का देशघाती स्वरूप ही अनुभाग का उदय होता है। क्योंकि उन दोनों प्रकृतियों के सभी उत्तर भेदों की वहां देशघाती स्वरूप से परिणाम करके उदय स्थिति का समवस्थान देखा जाता है। किंतु जो विकल श्रुत धारक, अभी जो 14 पूर्वधारी उसकी तो बात बताए, तो उसके जितने वो कर्म के भेद है वो सारे ही देशघाती रूप से वहां पर उदय में आ रहे हैं। जो विकल श्रुत धारक और विकल मति ज्ञानी जीव क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है उसके इन दोनों प्रकृतियों के उत्तर भेदों के अनुभाग का सर्वघाती स्वरूप उदय जानना चाहिए।
अपन जो
नमो जनानम
बोलते
दस, दो भाग है, दस दो हाँ, दो, वो विकल शुद्ध सकल वाला नहीं है, कम है उसका,
वो तो मतलब निकाल ले लिया अपने, 14 से एक कम हो गया सिर्फ विकल हो गए
हाँ।
लेकिन यहाँ पर जैसे अपन वो दंडा पढ़ते 44 दंडा नमो जनानम नमो जनानम, तो उसमें 10 कवि को नमस्कार किया था और 14 कवि को नमस्कार किया था
हाँ, होते हैं ना वो 10 कवि
दो ही कैटेगरी हो गई,
14 कवि
वाले और दूसरे 10 कवि वाले।
श्रेणी चढ़ता कौन है? 10 और 9 पूर्व वाला,
14 पूर्व वाला भी चढ़ेगा,
14 तो चढ़ेगा, वो तो उसकी तो उत्कृष्ट रूप से बात की है।
तो श्रेणी चढ़ने वाले में दो ले लिया, नहीं तो 14 पूर्व की बात हो गई,
पूर्व विद ही श्रेणी चढ़ते, ये बात उन्होंने बताई थी। अब यहाँ वही बता रहे, देखेंगे ना, अभी तो शुरू किया बताना। जो विकल श्रुत धारक और विकल मति ज्ञानी जीव क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है उसके इन दोनों प्रकृतियों के उत्तर भेदों के अनुभाग का सर्वघाती स्वरूप उदय जानना चाहिए। यद्यपि उक्त दोनों प्रकृतियों के अधस्तन आवरणों का देशघाती रूप से परिणाम संभव होने पर भी उपरिम आवरणों के भेदों का सर्वघाती स्वरूप से ही वहां प्रवृत्ति देखी जाती। क्या कहना चाहते हैं? ये इतने सारे आवरण के भेद है, मान लेते हैं 14 पूर्वधारी के तो सभी आवरणों का देशघाती हो गया उदय, अब कोई यहाँ इतना जान रहा है, ये इतने ज्ञान का धारक है, तो उसके नीचे के जो सारे वो देशघाती रूप से उदय में आ रहे और ये सर्वघाती रूप से, ये बात है उसकी। उपरिम आवरण है वो देश सर्वघाती रूप से उदय में आ रहे हैं। 14 पूर्वधारी के लिए सब, क्योंकि वो सारे उतने ही है ना देशघाती रूप से उसका। मैक्सिमम होगा तो भी वो सूक्ष्म वाला ही है, मैक्सिमम ज्ञान हुआ तो उसको तो शायद तो कहेंगे नहीं हम, वो है तो सूक्ष्म वाला ही, वो भी उसका देशघाती, परंतु अपर लिमिट है। हाँ, हायर लिमिट भी देशघाती है। खेद है कि यदि एक अक्षर से कम वह संपूर्ण शुद्ध का धारक होकर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो भी उसके श्रुत ज्ञानावरणीय और मति ज्ञानावरणीय के अनुभाग का सर्वघाती स्वरूप उदय विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो अंतिम आवरण का भेद है उसको सर्वघाती रूप से उदय है ऐसा कहेंगे। एक अक्षर कम वाला ज्ञान है
उसका। मतलब एक कटे में दो कम।
हाँ,
एक कटे में दो कम, इसलिए बोलूँ ना,
क्योंकि अंतिम आवरण के भेद का उसके सर्वघाती बना रही और विकल शुद्ध ज्ञान धरों का क्षपक श्रेणी पर आरोहण करना असंभव नहीं है। देखो अभी विकल किसको कहना वो बताएंगे, क्योंकि दस पूर्वधर और नौ पूर्वधरों का भी क्षपक श्रेणी पर आरोहण करना संभव है ऐसा आगम का उपदेश है। यहाँ भी करके वहां तक ही रुक गए, नौ पूर्वधर तक आ गए, उसके नीचे को नहीं लिया है।
हाँ,
इसलिए सबसे उत्कृष्ट क्षोभ लब्धि से परिणत सकल शुद्ध ज्ञानी जीव के तथा उत्कृष्ट कोष्ठ बुद्धि आदि चार निर्मल बुद्धि से युक्त जीव के इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग का देशघाती स्वरूप उदय होता है। हा? चार कौन से, एक है कोष्ठ, कोष्ठ नहीं 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 क्या बुद्धि चार, यानी बुद्धि यानी मति ज्ञान चार है, कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि हो गई जो कुछ है वो सब ले लेना। ये चार निर्मल बुद्धि मति ज्ञान के लिए लगाए, कोष्ठ बुद्धि एक हो गई उसमें से, कोष्ठ बुद्धि आदि चार। हाँ, है क्या लिखा हुआ आपके पास? हाँ, कोष्ठ बुद्धि और क्या क्या है?
अठारह रीति जो बुद्धि है, अवधि मतलब केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी, संबिन शोध तो है, ये संबिन शोध तो दूरस्पर्श, दूरग्रहण, दूरश्रवण, दूरदर्शन,
वो तो सब श्रुत में चले गए, हमको मति में लेना है। देखो कोष्ठ बुद्धि है, बीज बुद्धि है, पदानुसारी है, पदानुसारी कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि
लेना पड़ेगा,
प्रत्येक बुद्धि बोलो
प्रज्ञा अभी शुद्ध में चली जाएगी तो प्रत्येक प्रत्येक लोग प्रत्येक आने चाहिए।
बीज बुद्धि ये कोष्ठ बुद्धि तो यहाँ आ गई, बीज बुद्धि है, पदानुसारी और एक होती है ना कि एक अक्षर बता दो तो पूरा आता है, वो कौन सी है? पूजे में दे ना, पूजे जो पुस्तक आते यहाँ एक देवेंद्र अर्चना जिनेन्द्र अर्चना है। वही क्षेपक हाँ। क्योंकि पूर्व विधि श्रेणी चढ़ते हैं ऐसा है, यानी आद्य दो शुक्ल ध्यान किसके होते तो पूर्व विदों को ही होते, ये ऐसा सूत्र है, या तो 14 पूर्व है या 10 पूर्व है और मिनिमम 9 पूर्व है। बुद्धि का अर्थ ही मति ज्ञान होता है, कोष्ठ बुद्धि आदि का अर्थ क्या होता है? क्योंकि आगे लिखा ना, देखो सकल श्रुत ज्ञानी जीव के तथा पेज नंबर कौन सा है, क्या है, कौन सी पूजा है?
स्वस्ति मंगल विधान,
स्वस्ति मंगल, स्वस्ति मंगल। हाँ, पोष्टस्थ धान्य पुंगेरे के बीज कही प्रभु, संभिन्न संस्रोत्र पदानुसारी बुद्धि वृद्धि कही विभु। संभिन्न संस्रोत्र लिया उसमें, हाँ, पोष्ठ बुद्धि है, एक बीज बुद्धि है, एक संभिन्न संस्रोत्रत्व है और एक पदानुसारी है। श्रोतृत्व आपने अभी बताया था ना, संभिन्न श्रोतृत्व, सम डबल नहीं लगाए तो भी संभिन्न श्रोतृत्व। हमने गणधर की बात पहले एक बार पढ़ी थी ना, उसके कैसे कैसे बुद्धि थे, संभिन्न ने इतने भाषाओं का ज्ञान है और इतने लोग अपनी अपनी भाषाओं में बोल रहे अलग अलग, सब एक साथ वो उनके ज्ञान में आते हैं, यानी इतनी भाषाओं को जानते तो है ही, सबको सुनकर एक साथ उसका ज्ञान उनके भाषित होता है। ये बात जैसे अपने कोई ऑल इंडिया की कोई मीटिंग चल रही है, हा? कोई मलयालम, कोई तेलुगु और कोई तमिल में बोल रहा है, कोई हिंदी में, कोई गुजराती में, मराठी में, सबको एट ए टाइम सुनकर सबका अर्थ भाषित होता है, वो गणधर्म के होता है, पूरे पूरे उनके पूरे समोचरण में कहीं, यही तो संभिन्न श्रोत्र, तो उसी को कहा, मैं उसी की बात कर रही
हूँ।
हाँ,
इसमें उत्कृष्ट कौन सा है,
क्या
ये ज्ञान में ये सबसे उत्कृष्ट ज्ञान ये पदानुसारी
है, ये तो मति ज्ञान की बात
है,
मति ज्ञान में लिए ऐसी चार बुद्धि से युक्त जो चीज उसकी बात है। यहाँ लिखा ना, उत्कृष्ट क्षोभम लब्धि से परिणत सकल श्रुत ज्ञानी जीव, श्रुत ज्ञान में तो सब पूरा सब ले लिया, उसमें बारह अंग चौथ पूर्व सब कुछ ले लिया, चौथ पूर्व चतुर्दश पूर्व तथा उत्कृष्ट क्रोध कोष्ठ बुद्धि आदि चार निर्मल बुद्धि, ये निर्मति ज्ञान की बात है। यानी कौन सी सभी विद्या होगी, ये तो उत्कृष्ट मति ज्ञान है, वो उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान है, किसी जीव का दोनों होगी ना, तो बीज यानी कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि, ये चार बुद्धि लिए। एक तो उन्होंने बता दिया आदि में और तीन बता, तो श्रुत ज्ञान का लिया वो सकल श्रुत ज्ञान यानी चौदह पूर्व नौ ग्यारह अंग चौदह पूर्व का ज्ञान और निर्मल बुद्धि है चार बुद्धि यानी वो मति ज्ञान है। इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग का दोनों लिए ना, यानी श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण लिए, आप उसमें बोलते तो इसमें बात चलती है।
आपने तो ध्यान की बात बताई, उत्कृष्ट ध्यान किसको होता है, जो पर्व वो चौदह पूर्व ज्ञान
पूर्व विदों को होता, पहले दो शुक्ल ध्यान कौन से है, पहले पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार जो श्रेणी में होते हैं, वो किनके होते, तो पूर्व विदों के होते, पूर्व के जानकारों को होते हैं। अभी बताए ना चौदह पूर्व दस पूर्व है नौ पूर्व, इनके हो गए, अन्य को नहीं, उपशम श्रेणी में भी ये होगा, दोनों ही श्रेणियों के लिए नहीं है। ज्ञान नहीं निकल जाता है, ज्ञान निकलने की बात नहीं है, क्योंकि वो पूर्ववित तो छठे सातवें में भी, अभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा वो ये मिथ्यात्व में जाना चाहिए कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ, परंतु चढ़ता कौन है तो उसकी बात है, दोनों
दोनों
क्योंकि शुक्ल ध्यान तो दोनों में है, उपशम श्रेणी में भी शुक्ल ध्यान तो है ना।
हाँ,
ऐसा कहना मुझे लगता है कि जो उच्चम श्रेणी चढ़ा है, श्रेणी चढ़ेगा तो उसको पूर्वोत्तर ज्ञान होना चाहिए। और बोला जीवन जो कोई विचार हो जावे तो उसके लिए वो ज्ञान रहेगा वो ज्ञान जाएगा।
नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि को उतना तो नहीं कहेंगे, वो गया उसके यानी आत्मा जैसे पहले समय दृष्टि हुआ। नवशतकार ज्ञान हो जा रहे क्योंकि आत्मा वो तो छूट गया है, आत्मा ज्ञान तो रहा नहीं ना, मान्यता भी गलत गई और फिर वो ज्ञान का भी सही अर्थ नहीं भाषित हो रहा है उसको।
मेरे ख्याल से उसको आठ तक ही रह सकता है, नवे से
नौ पूर्व का मिथ्या दृष्टि को भी रह सकता है ना, नौ पूर्व का यहाँ तो ये बात आती ना, दस पूर्व वाला भी भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट होता है नहीं, वो विद्याओं के पीछे लगता है, भ्रष्ट हो जाता है। दसवा पूर्व जो है ना, नहीं उसको ही जो गिरता है उसको ही भिन्न कहा, और अभिनय ने जो नहीं गिरता वो अभिन्न है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दस पूर्वी है वो, फिर भी भिन्न दस पूर्वी अभिन्न दस पूर्वी ऐसा कहते हैं, जो गिरता है उसको भिन्न कहा। हाँ उसमें वो बकुश वगैरह वो अलग है, वो अलग कुलाक वगैरह वो मुनियों के भेद वो अलग है, उसमें भी वो अलग अलग है ना, स्नातक अलग है, बकुश अलग है, कुलाक वो नहीं गिरते उनकी बात है, और गिरने वालों की बात उसको भिन्न शुरू। नहीं नहीं वो गिरते हैं बाद में तभी उनको भिन्न कहते हैं, जो नहीं गिरते उनको अभिन्न कहते
हैं।
दस पूर्व में भी गिरने वाले और नहीं गिरने वाले। हाँ क्योंकि वो भ्रष्ट हो जाते ना बाद, वो विद्याओं के पीछे चलते हैं। वो रुद्र की बात और अलग है, नहीं वो तो भावलिंगी संत होते इतनी बात है, वो पूर्वों के ज्ञानी हो गए ही ये बात नहीं है, वो तो मेजोरिटी काल उनका भावलिंगी पने से बीत गया, बाद में वो भ्रष्ट हो जाते। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो तो इन जीवों के कौन से, ये मैक्सिमम वाले सकल ज्ञानी लिए ना, सकल में क्षुत ज्ञान भी संपूर्ण है और मति ज्ञान भी संपूर्ण है, ऐसे जीव लिए उनके लिए इन दोनों प्रकृतियों के अनुभव का देशघाती स्वरूप उदय होता है। दोनों कौन से, क्षुत ज्ञानावरण और मति ज्ञान, और उनसे अन्य क्षपक जीवों के सर्वघाती स्वरूप ही उदय होता है। अन्य को विकल श्रुतधर का, विकल में दस पूर्व वाले नौ पूर्व वाले लिए, जितना ज्ञान नहीं है उसका सर्वघाती रूप से उदय, ये बात यहाँ घटित होगी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इस प्रकार यह प्रकृत में सूत्र के अर्थ के साथ सद्भाव है। इसी प्रकार अवधि ज्ञानावरण आदि शेष प्रकृतियों के भी प्रकृत अर्थ के साथ जानकर योजना कर लेनी चाहिए। इतनी अभी अभी पूरा पढ़ेंगे, देखो इतनी विशेषता है अवधि ज्ञानावरण मनपरि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की, उत्तरोत्तर प्रकृतियों की विवक्षा के बिना भी देशघाती और सर्वघाती रूप से अनुभाग का उदय संभव है ऐसा जानना चाहिए। यानी सबको अवधि ज्ञान मनपरि ज्ञान होगा ही ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके सर्वघाती पने भी उदय हो सकता है, क्योंकि सभी जीवों में उन प्रकृतियों के क्षोभम का नियम उपलब्ध नहीं होता। हम थोड़ा रुकते तो हमारे सारे प्रश्न ही नहीं उठते हैं, हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। अब उक्त गाथा सूत्र के इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। अब इसी को और समझाएंगे। लब्धिये विहासन, लब्धिये इस पद की विभाषा इस प्रकार है, यानी लब्धि शब्द की अभी वो बात बताएंगे। यदि सव्यसम अक्षराणम खवो समो गदो तदो सुदावरणम मदी आवरणम च देशघादिम वेदयदि। यदि सभी अक्षरों का क्षोपशम हो गया है, क्षोपशम कहा सभी अक्षर ने इकट्ठी माइनस, तब यह जीव श्रुत ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण का देशघाती रूप वेदन करता है। यानी सभी जो आवरण के जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है वो सभी के सभी देशघाती रूप से उदय है, ये बात बता है। अधे कस्य भी अक्षरस्य न गदो खवो समो तदो सुदमति आवरणानि सर्वघादीनि वेदयदि। अब यदि एक भी अक्षर का क्षोपशम नहीं हुआ है, यानी एक अक्षर कम जान रहा है, तब यह क्षपक मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण को सर्वघाती रूप वेदन करता है। हमारी बात करते हैं, हम तेलुगु मलयालम नहीं जानते, जर्मन भाषा हम नहीं जानते, तो हमारा उस संबंधी सर्वघाती का उदय चल रहा है। जर्मन भाषा मति ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय चल रहा है।
या तो ये जर्मन और वो कहाँ पे आ गए?
हम जो देखते हैं, जानते हैं, हमें जो मालूम है, हमें जो मालूम है उसका उदाहरण देगी कि नहीं? और वो जो इतनी गंदर भाषाएं जानते हैं, क्यों जानते हैं? उनके सभी का आवरण का क्षोभ चल रहा है, देशघाती का चल रहा है, सभी का उहार चल रहा है, तभी तो सभी भाषाओं का ज्ञान है उनको। संभिन्न श्रोतृत्व भी कहा, सभी का ज्ञान है, इतना ही ना, एट अ टाइम सुनेंगे तभी तो सभी का ज्ञान में आ रहा है। देखो, अब यदि एक भी अक्षर का क्षोभशम नहीं हुआ है, तब यह क्षपक मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण को सर्वघाती रूप वेदन करता है। यानी पूरे सर्व मति ज्ञानावरण नहीं, उतने मात्र उस पर्टिकुलर आवरण को सर्वघाती रूप से वेदन करता है। यहाँ पर यद्यपि सब अक्षरों का क्षोभशम हो गया है ऐसा कहने पर 64 अक्षरों के संयोग से उत्पन्न स्वरूप होने से एक ही वर्ग प्रमाण इकट्ठी के, हाँ एक ही नहीं इकट्ठी के वर्ग प्रमाण एक एक 27 पेज निकालते। पहले भी बहुत सारे देशघाती देश है। एक ही एक ठीक है, एक ठीक का वर्ग क्यों लिया?
वर्ग को लिया, वो वर्ग स्थान है, तो छठा वर्ग स्थान बोल सकते हैं।
एक ही वर्ग प्रमाण इकट्ठी में तो एक कम है ना उसमें, तो
एक कम
कुछ ऊपर क्या लिखा है? चतुष्टी अक्षर संयोग जनिद सर्वेण एकट्ठी वग्ग प्रमाणानम सवेशी में व जय ख। एकट्ठी वर्ग प्रमाण, उन्होंने एकट्ठी के वर्ग प्रमाण किया, एकट्ठी वर्ग प्रमाणान संपूर्ण शुद्ध ज्ञान के समस्त द्रव्य भाव रूप अक्षरों का यदि क्षोभसम हो गया है तो वह सकल शुद्ध धारक शपक हम इकट्ठी माइनस एक बताते ना हमेशा करेक्शन कुछ नहीं हम पेंसिल से बोर्ड ब्रैकेट में लिखे इकट्ठी माइनस वन यानी इकट्ठी इटसेल्फ वर्ग है वर्ग धारा की वो संख्या है उस ब्रह्मा यानी उसमें एक कम है ये समझना संपूर्ण शुद्ध ज्ञान के समस्त द्रव्य भाव रूप अक्षरों का यदि क्षोभसम हो गया है तो वह सकल शुद्ध धारक शपक तथा चार अमल बुद्धि विशेष से संपन्न लिखा है ना अभी शुद्ध धारक हो गया अभी चार अमल बुद्धि किसमें लेना मति ज्ञान चार अमल बुद्धि विशेष से संपन्न वह शपक शुद्ध ज्ञानावन्य और मति ज्ञानावन्य प्रकृतियों को देशघाती रूप देता है इन्हें सभी की सभी जितनी प्रकृति है वो सब देशघाती रूप से उदय है क्योंकि वहां उस जीव के उन दोनों कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का पूरी तरह से देशघाती रूप से परिणमन हो गया है यह उक्त कथन का तात्पर्य है अध एकस्वी अक्षरस ऐसा कहने पर यदि एक भी अक्षर से कम सभी शुद्ध ज्ञान संबंधी अक्षरों का क्षोभसम हो गया है तो भी इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग को सर्वघाती रूप से ही वेदता है यानी जितना आवरण है उसको सर्वघाती रूप से वेदता है यह उक्त कथन का तात्पर्य है क्योंकि उस जीव के अंतिम अक्षरावरण के क्षोभसम का अभाव होने से उसके सर्वघातीपना उदय में देखा जाता है वो अंतिम कौन सा पूर्व है उसका अंतिम अक्षर त्रिलोक बिंदु सार है ना हाँ उसका अंतिम इसी प्रकार अंतराय कर्म का भी यदि सबसे अधिक क्षोभसम हो गया है तो उत्कृष्ट मनोबल आदि लब्धि से परिणत वह क्षपक जीव उसके अनुभाग को देशघाती रूप ही वेदता है यदि बहुत क्षोभसम नहीं प्राप्त हुआ है तो उस अंतराय कर्म को सर्वघाती रूप से ही वेदता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए अब इसी अर्थ का उपसंहार द्वारा प्ररूपण करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं यानी हमें तो प्रश्न था ना तो हमें आपको भी देशघाती का उदय केवल देशघाती उदय का नहीं है परंतु विवक्षित संबंधी ज्ञान जो है उसका तो सर्वघाती का उदय चल रहा है तो इसलिए उनको देशघाती का काम वो एक होता है सामान्य और एक होता है विशेषकर एवं एदेसिम तिन्नम घादिकम्माणम जासिम पैडीनम खयो समो गदो तासिम पैडीनम देशघाती उदयो जासिम पैडीनम खयो समो न गदो तासिम पैडीनम सर्वघाती उदयो अब ये क्लियर होता है ना इस प्रकार इन तीन घाती कर्म संबंधी जिन प्रकृतियों का क्षोभसम हो गया है उन प्रकृतियों का देशघाती रूप से उदय होता है तथा जिन प्रकृतियों का क्षोभसम नहीं हुआ है उन प्रकृतियों का सर्वघाती रूप से उदय होता है जैसे वो दस पूर्व वाला है और उसके चार पूर्वों का ज्ञान नहीं है उस संबंधी सर्वघाती का उदय चलता है यह सूत्रगत अर्थ है विशेषार्थ यह सामान्य वचन है कि क्षपक श्रेणी श्रेय करना पर आरोहण करने वाला श्रुत केवली होता है पर इस वचन का अपवाद भी पाया जाता है इसका उल्लेख चूनी सूत्र के आधार पर वीरसेन स्वामी ने किया है चूनी सूत्र में यह वचन उपलब्ध होता है कि श्रुत ज्ञान के एक भी अक्षर का आवरण कर्म यदि शेष है और आवरण का यदि क्षोभक्षम नहीं हुआ है तो उतने अंश में वह श्रुत ज्ञान आवरण के सर्वघातीपने का वेदन करता है। यही बात मति ज्ञानावरण के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। जिस जीव के श्रुत ज्ञानावरण का पूरा क्षोभक्षम होता है उसके मति ज्ञानावरण का भी पूरा क्षोभक्षम होता है। मति ज्ञान पूर्वक है ना, इसलिए उसको बता दिया। श्रुत ज्ञानावरण के पूरे क्षोभक्षम के पाए जाने से यहाँ जहाँ यह क्षपक जीव श्रुत केवल होता है वही मति ज्ञानावरण के पूरे क्षोभक्षम के पाए जाने से उसके यहाँ लिखा है कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि और पदानुसारित्व बुद्धि ये चार बुद्धियां अवश्य पाई जाती है। ऐसे जीव मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की अपेक्षा पूरे लब्धि संपन्न होते हैं क्योंकि उनके मात्र देशघाती अनुभव का उदय पाया जाता है। हाँ श्रुत केवली के होती है किंतु जिनके श्रुत ज्ञान में एक अक्षर की भी कमी पाई जाती है उनके मति ज्ञान भी उतने अंश में कम होता है क्योंकि उनके उतने अंश में सर्वघाती अनुभाग कर्म का उदय नियम से पाया जाता है। यानी जिस अक्षर संबंधी या जितने संबंधी उनके ज्ञान नहीं उसका सर्वघाती है। यह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के संबंध की व्यवस्था है। उक्त भाषा गाथा में आए गए हुए चौपद से यह भी ज्ञात होता है कि जो व्यवस्था मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के संबंध में है वही व्यवस्था चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के संबंध में भी जान लेना चाहिए। यानी उसके भी कितने पदार्थों संबंधी दर्शन है,
दर्शन तो सामान्य आवाज है,
अपन कितने को जान रहे हैं। मति ज्ञान भी सामान्य है फिर भी कितना जान रहे हैं उसमें है ना डिफरेंस। तो ऐसे चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की भी अलग रेंज है कि नहीं हर एक की। अर्थात जिन जीवों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन उनका पूरा क्षोभक्षम हुआ है, देखो पूरे क्षोभक्षम की बात है, वे लब्धि संपन्न होते हैं तथा जिन जीवों के इन दोनों कर्मों का पूरा क्षोभक्षम नहीं हुआ है वह जितने अंश में कम होता है उतने अंश में लब्धि संपन्न नहीं होते। यह मात्र देशघाती कर्म के उदय की अर्थात क्षोभक्षम की लब्धि संज्ञा है। यानी क्षोभक्षम होने को ही लब्धि का है और जिस कर्म का जितने अंश में क्षोभक्षम न होकर सर्वघाती अनुभाग का उदय शेष है उसके अलब्धि संज्ञा। यानी विशेष पूरे ज्ञानावरण को नहीं कहा उन्होंने, ज्ञानावरण के भेदों को लिया है इसमें। इसी प्रकार क्षपक श्रेणी से जिन जीवों को अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान पूरा पाया जाता है उनके मात्र देशघाती कर्म का उदय होने से यानी अवधि ज्ञान में भी पूरा का पूरा सर्व लगा देना सर्वावधि लेना वे इस लब्धि संपन्न होते हैं। और जिनके उक्त कर्मों का अंशतः यानी किसी को देशावधि है किसी को परमावधि के अलग भेद है तो उनके तो जो नहीं है उनका तो सर्वघाती। और कोई ऐसे भी जीव है कि पूरे के पूरे सब सर्वघाती, उनके अवधि ज्ञान है ही नहीं मनपरे ज्ञान है ही नहीं। या समग्र रूप से अंशतः या समग्र रूप से कहा ना सर्वघाती अनुभाग का उदय पाया जाता है वे अंशतः या पूरी तरह से अलब्धि संपन्न होते हैं। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा चौथी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब यथावसर प्राप्त पांचवी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकानो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतमो।